તારીખ 16/12/1994 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 200 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું કલકત્તામાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 89
इसलिए सभी प्रकार के शरीर रूप के सभी प्रकार के योग के भाव के भव भ्रमण के परिभ्रमण का मूल कारण क्या है वो अपना सदगुरु वैद्य सुना ज्ञानी जो वैद्य की जगह डॉक्टर की जगह है उसके आगे और उसके कहने के अनुसार नहीं आए तो शरीर में जो भी सिद्धांत नहीं होता है कि डॉक्टर कहेगा तुमको ये नहीं खाना है तो नहीं खाना चाहिए कितनी परहेज रखने परहेज रखने पड़ते हैं वो दवाई लेना है तो दवाई लेनी पड़ती है ऑपरेशन करना है उनको भी कटवाना पड़ता है हाथ पैर में कटवाना पड़ता है सब कुछ करना पड़ता है तो जैसे शरीर को मिटाने के लिए डॉक्टर की सूचना आज्ञा मान्य करनी पड़ती है वैसे ही भव रोग मिटाने के लिए भी ज्ञानी की आज्ञा मान्य करना इसके अलावा दूसरा कोई इलाज नहीं
शरीर का रोग मिटाने के लिए तो हम हमारी प्रकृति का समर्पण करते हैं डॉक्टर के सामने पर आत्म कल्याण करने के लिए हमारी प्रकृति का समर्पण नहीं करते तो क्या हम धर्म पा सकते हैं
तो क्या
धर्म पा सकते हैं क्या
शरीर रोग मिटाने के लिए हम डॉक्टर के पास सरेंडर करते हैं प्रकृति तो नहीं छोड़ते लेकिन कुछ काल के लिए तो उनकी ताबेदारी स्वीकार करनी पड़ती है जहां तक रोग नहीं देते शरीर को रोग मिटाने के लिए तो हमको उनकी आज्ञा मान्य करनी पड़ती है तो आत्मा के रोग को मिटाने के लिए प्रकृति छोड़ना वो जरूरी है क्या प्रश्न है तो प्रकृति अगर हम नहीं छोड़ेंगे तो हमको धर्म की प्राप्ति नहीं हो सकती है क्या ये प्रश्न है तो जो प्रकृति को छोड़ने को तैयार नहीं है तो धर्म प्राप्त कर सकता भी नहीं है क्यों कि जीव के प्रकृति दोष और आत्म स्वभाव धर्म वो परस्पर विरुद्ध है प्रतिपक्ष में है इसलिए जो यथार्थ मोक्षता में आता है प्रारंभ से शुरुआत से ही सबसे पहले कोई चेंज आता है फिर भाव होता है तो प्रकृति में हो जाता है मालूम पड़ जाता है कि पहले वाला वो आदमी नहीं है पहले वो कुछ और था अब कुछ और हो गया तो क्या फर्क पड़ा फर्क वहां पर आए कि उसकी प्रकृति बदल गई प्रकृति छूट गई है जिस प्रकृति से वो प्रवर्तन करता था वो प्रकृति गिली बढ़ जाती है या वो प्रकृति छूट जाती है कहने का अभिप्राय यह है कि अगर हमें हमारी प्रकृति नहीं छोड़नी है तो हमें धर्म प्राप्त करने की आशा नहीं रखनी चाहिए और वाकई हमें खरेखर हमें धर्म की प्राप्ति करनी है तो हमें हमारी प्रकृति को छोड़नी चाहिए अवश्य अवश्य छोड़ना उसमें हमारी अभिप्राय में तैयारी हो जानी चाहिए
प्रकृति के समर्पण से क्या क्या लेना
प्रकृति के समर्पण में वो है कि हर मनुष्य की कहीं न कहीं प्रकृति होती है जैसे चार प्रकार की प्रकृति तो प्रसिद्ध है, क्रोध माया लोभ, ऐसे किसी पिता प्रकृति होती है तो किसी भी प्रकार की होती है। तो ये प्रकृति को हम लौकिक भाषा में क्या कहते हैं, ये का स्वभाव ऐसा है वो नहीं छूटेगा, इसका स्वभाव ऐसा वो बदल नहीं सकता। ऐसी एक रूढ़ मान्यता हो गई है कि मनुष्य का जो स्वभाव होता है वो छोड़ नहीं सकता, पर उसे गुजरात में जो हमारे कह मतलब प्राण में प्रकृति साथ जाए या वर्ष क्या रही जा सकता, वर्ष नहीं मर क्या सभी नहीं छोड़े। जैसे किसी को हाथों का टेंशन रखने की प्रकृति है, बिना बदल छोटे मोटे बात में, और उस टेंशन रखने से उनको सभी रोग हो जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, या टेंशन बढ़ने से डायबिटीज हो जाता है, पेंक्रियास फेल होता है, कुछ ना कुछ सभी रोग भी हो जाता है। अब इस आदमी को आप ये कहो कि आप ये छोड़ दो, आपको ये तकलीफ हो रही है, तो मरने के लिए तैयार है, प्रकृति को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होगा। उतना वो जीव प्रकृति वश प्रवृत्ति करना पड़ता है उसको, उतना प्रवृत्ति वश प्रकृति वश हो जाता है कि जिस रोग से मृत्यु हो सकती है तो बोलेगा कि भले ही मरना, ये तो मेरे से नहीं छूटेगा, और यही प्रबंध का कारण है, ये प्रतिबंध है। भीतर में ये प्रकृति का प्रतिबंध है और बाहर में प्रकृति का विषय जो पदार्थ है इसका प्रतिबंध है, और जहां प्रतिबंध होता है वहां स्वच्छंद होता ही है, और स्वच्छंद और प्रतिबंध दोनों परिभ्रमण का कारण है। परिभ्रमण का कारण क्या, कृपा देखेंगे स्वच्छंद और प्रतिबंध। तो प्रतिबंध में बाहर कोई निमित्त या पदार्थ होता है, भीतर में अपनी प्रकृति स्वभाव होता है जो आसानी से छोड़ा नहीं जाता, किंतु यथार्थ धर्म के पूर्व भूमिका में भी उतनी ताकत है तो पहले प्रकृति को शिथिल करता है, पहला घाव प्रकृति पर लग जाता है और प्रकृति शिथिल हो जाती है और क्रमशः प्रकृति चली जाती है। संसार में तो लोग ऐसा ही जानते हैं कि प्रकृति की कोई दवाई नहीं है, प्रकृति का कोई औषध नहीं है, लेकिन प्रकृति की दवाई है, ज्ञान है वो प्रकृति को मारने वाला है। ज्ञान बलवान हुआ प्रकृति मरेगी, प्रकृति बलवान होगा वही ज्ञान करेगा, दोनों दूसरे दूसरे के दुश्मन है। छठवां, ज्ञानी की आज्ञा का आराधन वह कर सकता है जो एक निष्ठा से तन मन धन की आसक्ति का त्याग करके उसकी भक्ति में जुटता है। ज्ञानी की आज्ञा से कौन बढ़ सकता है, कौन बढ़ता है, ये कड़ी शर्त है। एक निष्ठा से आत्मकल्याण की एक निष्ठा, एक भावना, एक लक्ष्य जिसको है वो तो ज्ञानी की आराधना, ज्ञानी की आज्ञा का आराधन करेगा कि हमें किसी कीमत पे आत्मकल्याण कर ही लेना है, हम जो भी कहेंगे हम करने के लिए तैयार हैं।
अगर हम ऐसा नहीं कर रहे तो हम विराधना कर रहे हैं।
हाँ, हम आराधना नहीं करते हैं तो विराधना अवश्य करते हैं, क्योंकि तीसरी जाति का परिणाम है ही नहीं। या तो जीव के परिणाम आराधना के होते हैं या तो विराधना के होते हैं, तीसरी जाति का तो परिणाम ही नहीं है। या तो आराधन करो या तो विराधना करो, पसंद करो तो क्या करना हो।
मतलब दर्शन तत्काल अगर हम परिणमन नहीं कर रहे हो वैसा ही दक्षिण तत्काल हम वैसे ही परिणमित नहीं हो रहे हैं, आज्ञा को नहीं उठा रहे हैं, तो हम आराधना नहीं कर रहे हैं।
नहीं, नहीं। अगर ज्ञानी कहते हैं तो अगर हम नहीं करते तो आराधना नहीं करते, नहीं करते
कि फिर उनके वचन को सुनते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं, सत्संग करते हैं, तो ये सब भी आराधना का स्वरूप नहीं
है। ये हमारे मन को राजी रखने की बात है। क्या है, हमने पढ़ा तो सही, सुना तो सही, पर उतने दिन राजी हो जाते हैं तो आराधना कहाँ से। क्या ये मनोरंजन का विषय है, क्या मन को राजी रखने का विषय है? जो बात हमने पढ़ी, जो बात हमने सुनी, उसी का अगर अमलीकरण हम कर नहीं करते या अमलीकरण करने का प्रयास नहीं करते तो हम पढ़ के सुन करके राजी हो जाते हैं, मतलब संतुष्ट हो जाते हैं, और यही हमारा अटकने का स्थान है। जो भी पढ़ करके सुन करके संतुष्ट होना, वहां जो अटकता है और जहां से अटकता है वहां से वो पीछे जाता है, आगे नहीं बढ़ सकता, वो पीछे जाता है, नियम से पीछे जाएगा।
तो सही आराधना का स्वरूप क्या है? सही आराधना का क्या स्वरूप?
सही आराधना का वो स्वरूप है जैसा करे, कहे, सुने वैसा परिणमन करे। आराधना तो परिणमन रूप है, आराधना विकल्प वाणी रूप नहीं है, आराधना परिणम रूप होती है। परिणमन कर यहां तो कहते हैं कि ज्ञानी की आज्ञा का आराधन कौन कर सकता है, ऐसा एक प्रश्न उठाया जाए तो इसके उत्तर रूप में बचना कि ज्ञानी की आराधन आज्ञा का आराधन वो कर सकता है कि जिसकी एक निष्ठा होती है, आत्म कल्याण की ही निष्ठा होती है, वही भावना होती है, वही लक्ष्य होता है, वही ध्येय होता है और कुछ नहीं होता, वो आज्ञा का आराधन कर सकता है। जिसको आत्म कल्याण करना है और जिसको संसार का सुख भी चाहिए, वो भी जिसको जुटाना है, प्राप्त करना है, तो ज्ञानी की आज्ञा का आराधन नहीं कर सकता।
इसे संसार के सुख के लिए नहीं, पर हम जिस फैमिली में हैं तो उनका तो कर्तव्य है देखभाल करने का, तो वो कर्तव्य भी नहीं करना चाहिए।
क्या आत्म कल्याण करने का आत्मा का कर्तव्य नहीं है?
ये उसके साथ साथ
प्रायोरिटी किसको देंगे? जब दो कर्तव्य लगता है तो दो में से एक को तो मुख्य करना पड़ेगा ना, दो तो मुख्य रहता है, रह सकता है। दूसरी बात, हम वास्तव में आत्मा है या वास्तव में हम फैमिली मेंबर है, हम कौन है? तो हम आत्मा है तो हमारा कर्तव्य आत्म कल्याण का होता है, अगर हम फैमिली मेंबर है तो हमारा कर्तव्य फैमिली मेंबर के अनुसार होता है। हम है कौन?
है
और
प्रतिबंध जो
फैमिली कर्तव्य मतलब क्या? कुटुंब प्रतिबंध में हम रहना चाहते हैं और कुटुंब प्रतिबंध में रहकर के हम आत्म कल्याण करना चाहते हैं, क्या बात है?
रहना तो चाहते हैं पर कुटुंब प्रतिबंध
चाहते लेकिन जो रोज की अशांति करते हैं ना, रोज अशांति भी तो करते हैं कुटुंब के साथ।
अशांति तो शांति के लिए करनी पड़ती है क्या? ऐसी अशांति शांति के लिए करनी पड़ती है,
करनी पड़ती है कि करनी चाहिए भी?
जरूरत लगे तो करनी चाहिए, आवश्यकता लगे तो करनी चाहिए, इसमें क्या है? देखिए, हमने भूतकाल में क्या किया है कि संसार के लायक परिणाम किया है, क्या मोक्षवाद के लायक, मोक्ष के लायक परिणाम किए हैं कि नहीं किए हैं? तो हमारा भूतकाल तो संसार के लायक किए हैं परिणाम, तो उसका फल भी संसार आया है हमारे सामने, शरीर मिला, कुटुंब मिला, सब कुछ मिला है वो सब। अब हम इस संसार से छूटने का जब प्रयास करेंगे तो ये जो हमारे परिणाम से उत्पन्न हुए जो परिस्थिति है उसके जिसके बंधन में हम, जिसके पकड़ में हैं, और हमारे परिवार वाले भी, जो अगल बगल वाले भी संसारी हैं, तो वो हमको ताने का वहां, वो ताने का वहां खींचेंगे, इधर मत जाओ, इधर जाने लायक नहीं है, ऐसा कहेंगे। वो तो बेचारे नहीं समझते ऐसा कहेंगे। इसके ऊपर करुणा करना, क्रोध बंद करना क्या?
वो उतना विवेक तो नहीं,
उस समय तो क्रोध ही आएगा क्योंकि हमको तो वो बाधक रूप लगते हैं। पर वो तो क्रोध तो आता ही है ना। अब जैसे कोई हमारा गला दबाएगा तो हम ये सोचेंगे क्या उस समय कि एक जीव दूसरे जीव का कुछ करता धरता नहीं है, और ये अहिंसा प्रधान धर्म, हम ये सब सोचेंगे कि हम जोर से धक्का मारेंगे उसको?
पोलाइटनेस होना चाहिए, उस आत्मा के प्रति क्रोध नहीं करना। उनकी जो धर्म में बाधा करने वाली वृत्ति है, ये दूषित वृत्ति है, उसको क्रोध करना,
उसका निषेध आता है,
उसका निषेध करना, आत्मा को क्रोध नहीं करना। वो भी एक भगवान आत्मा है, चाहे कुछ भी लगता हो अपने को, लेकिन वो भी एक भगवान आत्मा है, चाहे कोई किताब के रूप में हो, पति के रूप में हो, स्त्री के रूप में हो, भाई के रूप में हो, मां के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, तो आत्मा ही आत्मा है। तो आत्मा तो सिर्फ परमात्मा है, वो भगवान स्वरूप है, लेकिन जब वो अपने भगवान को भूलता है तो उसको भी अनेक प्रकार का दोष हो जाता है। तो ऐसा जानकर इसके दोष के प्रति क्रोध करो, क्रोध प्रत्येक वर्ते क्रोध स्वभाव होता, क्रोध प्रत्येक क्रोध करो क्योंकि ये दोष है, लेकिन किसी आत्मा के प्रति नहीं, उतना भेद रखना है। अगर उतना भेद नहीं रहेगा तो जैसे दूसरे संसारी जीव अपने राग के विषय में बाधा करने वाले के प्रति द्वेष करता है, वैसे मुमुक्ष भी अपने कार्य में बाधा करने वाले के प्रति द्वेष करेगा जो उचित नहीं है, तो मुमुक्ष के लिए उचित नहीं है। फिर तो दो में अंतर क्या रहा? मुमुक्ष और गैर मुमुक्ष के बीच में कौन सा अंतर रहा है? तो वो अंतर है,
तो पर्याय बुद्धि का तो त्याग करके ही मुमुक्षता में प्रवेश है। पर्याय बुद्धि का तो त्याग करके ही मुमुक्षता में प्रवेश है।
पर्याय बुद्धि को गौण करके वो त्याग करने के लिए मुमुक्षता उत्पन्न होती है, पर्याय मुमुक्षता नहीं करता है। यह विषय करता है कि जिसकी आत्मकल्याण की एकमात्र निष्ठा वही ज्ञानी का आज्ञा का आराधन कर सकेगा, और ऐसा जीव को कर्मा धन की आसक्ति नहीं रहेगी, उसको शरीर पर महत्व नहीं रहेगा कि मेरा शरीर है। अगर ये शरीर का संयोग है, पर ये संयोग भी ज्ञानी की आज्ञा का आराधन करने में उसका सदुपयोग होता हो, हमें इससे ज्यादा कोई महत्व के कारण शरीर का प्रयोग हमें नहीं करना है, जैसे खाने में पीने में नहीं। उसी तरह
तन मन धन की आसक्ति, तन मन धन की आसक्ति से क्या
आसक्ति में खिंचाव शरीर के प्रति महत्व के कारण होने वाला खिंचाव, धन के प्रति महत्व के कारण होने वाला लगाव, उसको आसक्ति कहते हैं। अट्रैक्शन, अटैचमेंट, उसको आसक्ति कहते हैं। तो वो ढीले हो जाते हैं, उसको त्याग करना मतलब वो ढीले हो ही जाते हैं। उसको तन की दरकार नहीं रहती है, धन की दरकार रहती है, मन मेरे प्रकृति की दरकार नहीं रहती है। मन का मतलब यह उतना ही है, क्योंकि मन प्रकृति वश होता है और संसार में उसकी प्रकृति भी ढीली हो जाती है। शरीर के खान पीन भोग भोग में भी उनका मन नहीं लगता है, पर जो भी संपत्ति है तो उनका अभिप्राय वो हो जाता है कि संपत्ति का तो नाश होने वाला है ही, या तो संपत्ति का खर्च होता है, अभाव होता है भोग में, या संपत्ति का खर्च होता है सन्मार्ग का उद्योग करने में, या संपत्ति वैसे ही पुण्य का उदय खत्म होने से, पाप का उदय आने से वैसे चली जाती है। तीन प्रकार से उसका व्यय होता है।
ये सत्संग के आधार बिना तो ये छूटेगा।
हाँ, तो है।
इसका आधार होगा तो वो सही।
ऐसी बातें सत्संग के बिना समझ में नहीं आती। तो सत्संग तो एक मात्र आधार है, उससे उन्होंने बताया कि सत्संग एक मात्र आधार है आत्म कल्याण के लिए। सत्संग जैसा आधार दूसरा कोई नहीं है।
जो भी हमारी प्रकृति दोष है, जहाँ जहाँ को रुचि है, उसके आधार से ये सब अपने आप ही उसका बल करते हैं।
सत्संग का सेवन करने से ये प्रकृति चाहिए, ये इसका एक सबसे बढ़िया सत्याचार हुई है। और यानी कि भक्ति में जो जुड़ता है,
सत्संग भी हमको उसी आधार से करना चाहिए जहाँ हमारा प्रकृति दोष का अपना समान कर हनुमान को सुनने समझने से वो भी दोष नहीं
चाहिए। एकमात्र सुनते रहने से काम नहीं होगा, हमको हमारे दोष छोड़ने की तीव्रता दरकार, तीव्र दरकार, अधिक सावधानी, अधिक जागृति सत्संग में आनी चाहिए। इस प्रकार से सत्संग करते हैं तो वो सही प्रकार है, अगर उस प्रकार से नहीं करते हैं तो सुन सुन करके, पढ़ पढ़ करके संतुष्ट हो जाएंगे। चलो घंटा भर ये सुनते तो हैं, पढ़ते तो हैं, ये संतुष्ट होने का रास्ता नहीं है, ये मार्ग नहीं है। ज्ञानी की आज्ञा का आराधन वह कर सकता है जो एक निष्ठा से तन मन धन की आसक्ति को छोड़ करके ज्ञानी की भक्ति में जुड़ता है। और यहाँ से भी ले सकते हैं इसी वचनावरण से कि जो ज्ञानी की अत्यंत भक्ति करता है उनको तन मन धन की आसक्ति छूट जाती है, सहज मात्रा में छूट जाती है, और अत्यंत भक्ति के कारण से उसकी आज्ञा का आराधन कर सकता है, तो उसी को ही आत्म कल्याण होता है, दूसरे को नहीं होता है। यहां से भी बात ले सकते हैं कि जो अत्यंत भक्ति से ज्ञानी के चरण में रहता है उसको तत्वबंधन की आसक्ति छूट जाती है। वही ज्ञानी की आज्ञा का आराधन करने के लायक हो पाए और उसी का आत्म कल्याण हो जाता है। यद्यपि ज्ञानी भक्ति को नहीं चाहते, ज्ञानी किसी की भक्ति को भी नहीं चाहते, अगर कोई दूसरे की भक्ति की चाहना रखता है तो वो ज्ञानी नहीं है। ऐसे यहां से बीते रहना है। यद्यपि ज्ञानी भक्ति को नहीं चाहते हैं परंतु मोक्षाभिलाषी जो है, मोक्ष मोक्ष का अभिलाषी है, उसे ज्ञानी की भक्ति किए बिना ज्ञानी का उपदेश परिणाम नहीं होता। एक योग्यता का कारण है, जो भक्ति से उपदेश सुनता है उसको उपदेश का परिणाम होता है। जी भक्ति
किस तरह की होती
है? उसकी क्या है, ज्ञानी के को पहचान करके उसका बहुमान आना, उसको भक्ति कहते हैं। ज्ञानी को पहचान करके उसका बहुमान आना कोई ज्ञानी की भक्ति है। उसके प्रति अत्यंत आदर होना, पर पहचान होने से परमेश्वर बुद्धि होना, ऐसा तो परमेश्वर तो कितने स्थान में होते हैं, और पंच परमिष्टि में भी छठे गुण स्थान से परमिष्टि पर लागू होता है, पांचवें गुण स्थान से नहीं होता है। लेकिन ये बात नहीं सिद्धांत की, यहां कर्णानु योग का इस सिद्धांत गौण रहता है, और चतुर्थ गुण स्थान वाले में परमेश्वर बुद्धि हो जाती है। सुनवा तो आया था ना कि द्रव्यानु योग का सिद्धांत है कि कोई किसी को कुछ देता नहीं, कोई किसी का कुछ लेता नहीं, फिर भी मुमुक्षु को ऐसा अनुभव होता है कि मुझे तो मेरा आत्मा मेरे प्रभु ने दिया, ये तो प्रभु याद है, प्रभु मेरे ज्ञानी। तो सिद्धांत पर आ रहा फिर मनुष्य वैसे यहां भी जो परमेश्वर बुद्धि से ज्ञानी की भक्ति में रहकर के उपदेश को सुनता है उसको उपदेश परिणाम होता है। पर ये बात तो आयुर्वेद वाले भी बोलेंगे, वही डॉक्टर क्या बोलेंगे, हमारे में श्रद्धा है तुमको और हम जो दवाई देंगे फिर भी ऐसा कहता है क्यों, कि उसको साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी साथ में देनी पड़ती है। सभी रोग होता है साथ साथ साइकोलॉजी डिस्टर्ब होती है मनुष्य की, तो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है और कुछ नहीं है, उसमें दवाई और विश्वास तो कोई संबंध ही नहीं होता है। लेकिन वो विश्वास से खाएगा तो थोड़ा फायदा ज्यादा उसको मालूम पड़ेगा, तो उसका डिप्रेशन छूट जाएगा, जो डिप्रेशन में आया है बीमारी के कारण से, तो डिप्रेशन उसका प्रमुख छूट जाएगा। यहां तो बिल्कुल बात है कि जिसको विश्वास है उतना ही नहीं, अत्यंत भक्ति है उसी को ही उपदेश का परिणाम होता है, यानी ऐसी योग्यता में ही परिणमित होता है उपदेश, ऐसी बिना योग्यता उपदेश का परिणाम नहीं होता
है। परोक्ष ज्ञानी का कैसे सुन करके हम पहचान करके परिणमन कर सकते हैं?
पहचान के पहचान प्रत्यक्ष के अलावा होती नहीं, हम कहेंगे कि आपके हाथ में सोना नहीं दिया है, सोना के परख करो, सोना हमारे हाथ में है तो तुम सोने के परख कर दो, कैसे करोगे? हमारे हाथ में सोना आएगा, हम कसौटी पे लगाएगा, फिर परख करेंगे, देख के भी परख नहीं होते सोने के, क्यों? पित्तल भी कभी चमकता है, आर्टिफिशियल जो धातु आती है वो भी चमक करती है, तो कसौटी पर लगाने से फर्क पड़ता है। वैसे ज्ञानी प्रत्यक्ष हो और इसकी परिणति की पहचान हो परिचय में आकर के, तब तो उसकी पहचान होती है, पर परोक्ष वो परिस्थिति नहीं है, वहां तो कसौटी पर कुछ कर लगा दो जो चीज ही नहीं है तो पहचान होती है, तो मेरे अवसर होता ही नहीं है। कैसे तो दूर हो उसकी वीडियो कैसेट भी काम में नहीं आएगी, ऑडियो कैसेट तो काम में नहीं आते, वीडियो कैसेट भी काम में नहीं आते।
इसका कारण?
इसका कारण के वो जोड़ है क्या? इसका कारण क्या वो जोड़ है? वो प्रश्न चला कोई वैसे के पास वो प्रश्न गुरुदेव के नाम से चला, प्रत्यक्ष ज्ञानी की बात आती है तो गौरवदेव में भी आते हैं, शास्त्र में भी आते हैं। तो हम गुरुदेव स्वर्ग में गए हैं, हमारे पास उनकी कैसेट है, हम सुन के ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो प्रश्न पूछने वाले को तो उम्मीद थी कि बैठे को गुरुदेव के प्रति भक्ति है ना, तो हार देंगे, भक्ति से हार कर देंगे कि नहीं ना दिया, ऐसे ज्ञान प्राप्ति नहीं हो। तो फिर दूसरा प्रश्न आया कि ऑडियो कैसेट में तो गुरुदेव दिखते नहीं है, लेकिन वीडियो कैसेट में तो साक्षात गुरुदेव जैसे प्रवचन करते हैं वैसे ही दिखता है हमको, ऐसे हाथ करते हैं, ऐसे हाथ मिचते हैं, ऐसा करते हैं, शब्दों भी प्रत्यक्ष में होता है वैसा ही होता है, तो इससे तो हमको ज्ञान प्राप्ति हो सकती है कि नहीं हो सकती है, तो कैसे ना दे दिया, कैसे दे दिया? प्रत्यक्ष तो प्रत्यक्ष ही चाहिए, वीडियो कैसेट को तो हम एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे तो सामान में रखेंगे जिसमें गुरुदेव है, क्या है इसमें गुरुदेव? इसमें गुरुदेव नहीं है, गुरुदेव को सामान में नहीं रखा जाता। अस्ति नास्ति का बहुत बड़ा अंतर है और नहीं है, नास्ति मतलब नहीं है, नहीं है तो नहीं है, टोटली नहीं है, कुछ अंश में भी है, नहीं है मैं कुछ अंश में भी है, ऐसी बात नहीं होती है, ये वस्तु का स्वरूप है। इसलिए प्रत्यक्ष का कोई अन्य पर्याय नहीं है, प्रत्यक्ष का कोई अन्य विकल्प नहीं है, नो अल्टरनेटिव, प्रत्यक्ष का दूसरा कोई अवेजी नहीं है, ये वस्तु स्थिति है। यद्यपि ज्ञानी भक्ति नहीं चाहते हैं परंतु मोक्षाभिलाषी को भक्ति के बिना ज्ञानी के उपदेश परिगमन नहीं होता, परिगमन भी नहीं होता। यथार्थ रूप से मदन का हेतु भी नहीं होता और विधिध्यासन आदि का हेतु भी नहीं होता। मन सो करेंगे यथार्थ रूप से नहीं हो सकता, भक्ति नहीं है तो विश्वास नहीं है, भक्ति नहीं है तो क्या विश्वास ही नहीं है। तो मनन कहां से होगा? जिस पर विश्वास नहीं है उसका मनन कहां से होगा? 526 पत्र में कौन सुंदर बात किया है, सदपुरुष का योग होने के बाद प्रत्यक्ष योग के बाद सदपुरुष का प्रत्यक्ष होने से आत्मज्ञान कुछ दुर्लभ नहीं है। जो आत्मज्ञान जन्म मरण के नाश का कारण है, अवग्रमण के नाश का कारण है, मोक्ष का कारण है, पर अनादि से प्राप्त नहीं हुआ है, ऐसा आत्मज्ञान सत्पुरुष का प्रत्यक्ष योग होने पर बिल्कुल दुर्लभ नहीं है, कुछ दुर्लभ नहीं है। तथापि दुर्लभ क्यों दुर्लभ नहीं है कि तथापि इस सत्पुरुष के विषय, सत्पुरुष में, उसके वचन में, उसके वचन के आशय में प्रीति भक्ति नहीं होती, वहां तक जीव में आत्मविचार भी हृदय में आने योग्य नहीं है। आत्मकल्याण तो कब होता है, आत्मज्ञान तो कब प्राप्त होता है कि सत्पुरुष के प्रति प्रीति भक्ति हो, इसके वचन के प्रति प्रीति भक्ति हो, और इस वचन का आशय जो आत्मकल्याण है उसके प्रति प्रीति भक्ति हो, तो आत्मकल्याण कुछ दुर्लभ नहीं है, वरना आत्मकल्याण दुर्लभ है, आत्मज्ञान दुर्लभ है। तो आत्मज्ञान होने का सबसे सरल और सुगम तरीका यहां बता दिया है, और यहां अकेली भक्ति नहीं लिखी है, प्रीति भक्ति लिखी है, पर प्रेम प्रवाह बड़े प्रभु से प्रभु में न गुरु में, यानी सब आगम भेद से पूर्व से और अगर ऐसी प्रीति भक्ति नहीं आई तो उस जीव को सत्पुरुष का योग हुआ है ऐसा कह सकते नहीं, उसको संयोग अयोग के बराबर है, यानी संयोग वियोग के बराबर है। उतना ही नहीं, उसको सत्पुरुष का योग हुआ है ऐसा उनको खरेखर भाषित हुआ है ऐसा भी कह सकते हैं। दोनों बात भैया, योग हुआ है वो भी कहना कठिन है, पर खरेखर योग हुआ है ऐसा हमको लगा नहीं है, और लगा है ऐसा कहना भी कठिन है। ये बहुत सुंदर बात क्या है, परिवार में कोई बच्चा जन्म लेता है, साल भर का होता है, थोड़ा बहुत बोलने को सीखता है, क्या वो स्पष्ट बोलता है क्या, और गुजराती माँ तो भी बोले तो भाषा बोलते सबको कितना प्रिय लगता है। अरे आज तो कल एक अक्षर बोलता था, आज तो दो अक्षर बोलता है, एक में से दो अक्षर बोलता है तो सब राजी राजी हो जाते हैं, क्यों, प्रीति है इस बच्चे पे, प्रीति है इसलिए। तो ज्ञानी के वचन पर तुमको कितनी प्रीति है, बच्चे के वचन पर उतनी प्रीति है, तो ज्ञानी के वचन पर कितनी प्रीति है आपको, उनकी तो तुतली भाषा भी मीठी लगती है, तो तुझे तेरे आत्मकल्याण की भाषा मीठी नहीं लगती है क्या, क्या हो गया है तुझे, हाँ जो परम कल्याण का कारण होता है ऐसा उपदेश है तो तुमको मीठा नहीं लगता है, ऐसा नहीं लगता है, सुहाता नहीं, क्या बात हो गया। तो जिसको प्रीति भक्ति जो हम साथ में आती है उनको आत्मज्ञान कुछ दुर्लभ नहीं है, और जिसको ऐसा नहीं होता है उसको आत्मज्ञान तो होने वाला नहीं है, उसको सतपुरुष का योग हुआ है वो बात भी मानने लायक नहीं है, और उसको आत्मकल्याण का विचार का उदय हुआ है ऐसा भी कह सकते नहीं। कितना कितनी अलग अलग शैली से इस बात का प्रतिपादन किया है, भिन्न भिन्न शैली से एक ही बात का प्रतिपादन करते हैं, तो इनके जो विषय का जो अनेक पहलू है वो खुलता है, अनेक पहलू से एक खास विषय पर जो हाईलाइट भी देते हैं अलग अलग पहलू से देते हैं, ये विशेषता है।
सत्पुरुष का योग योग रूप हुआ हो तो क्या जीव ये सिद्धांत का शर पकड़ेगा क्या कि भावना में तो वो एक पल भी हमसे दूर नहीं है, क्षेत्र की दूरी तो कर्माधीन है।
उनको तो कुछ आती नहीं है, जानते हैं लेकिन वो सिद्धांत गौण हो जाता है। एक भावना ऐसी चीज होती है वहां सिद्धांत भी गौण होता है। कृपालु देव को मालूम था कि किस क्षेत्र में किस काल में जन्म लेने वाले को यहां से मुक्ति नहीं होती, लेकिन वो स्वीकार करने को तैयार नहीं थे, अपनी भावना में उतने थे कि हम तो इसी भवन में हमारा काम पूरा करके इस काल में चले जाएंगे।
213
और अनंत तीर्थंकरों ने भी सिद्धांत को गौण रखकर जिस भावना से तीर्थंकर प्रकृति बांधी है उसमें सिद्धांत को उड़ाया है, तीर्थंकरों ने सिद्धांत को उड़ाया है, लेकिन तीर्थंकरों को ही भावना हुई, सभी तीर्थंकरों को ही भावना होगी कि मैं इस जगत के सभी जीव को आत्मा कल्याण करा दू, सर्वदेव कर्म शासन रसी, तो कैसे नाम में वो बात संभवित है। संसार के सभी जीव मोक्ष में जा सकते हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता। अनंत तो एवरी है जिसको सम्यक दर्शन भी होने वाला नहीं, पर इससे ज्यादा अनंत भवी है वो भी अभवी जैसे हैं, इसको भी सभी दर्शन होने वाला नहीं है, भव्य होने पर। लेकिन भगवान की भावना में तो एक की बात बाकी नहीं थी, एक को भी भावना में नहीं छोड़ते थे, पर वो भी जानते हैं कि 6 महीना 8 समय में 608 से ज्यादा की मुक्ति होती नहीं, तो सब भूल जाते हैं। भावना आती है तो सब सिद्धांत को मानो के भूल गए हो, उन तो नहीं गए हैं, जानते तो सब कुछ है लेकिन गौण कर देते हैं। भावना एक ऐसी प्रबल चीज होती है कि जो वस्तु के स्वरूप को भी उल्लंघन करके चलती है, अपने आप ऐसी चलती है। जो मोक्षाभिलाषी है तो ज्ञानी की भक्ति किए बिना उसको उपदेश परिवर्तन होता नहीं, अगर वो ज्ञानी की भक्ति पूर्वक उपदेश भक्ति बिना उपदेश सुनता है तो उसको मोक्षाभिलाष कहना भी क्या, उसको मोक्ष कह सकते हैं, और उसको ये उपदेश सुनने को मिलता है फिर भी मनन और विद्यासन का हेतु नहीं होता, उसको मन में छोड़ता नहीं, उसका सहज मनन उसको होता नहीं, और इस उपदेश का जो प्रसंग है उसका उसको ध्यान लगता है, बार बार उसका ध्यान लगना चाहिए, लक्ष्य हो जाना चाहिए, वो विजुअलाइज होना चाहिए, वो नहीं होता है। निधिध्यासन का मतलब विजुअलाइज होना। इसलिए मोक्ष को ज्ञानी की भक्ति अवश्य कर्तव्य है, ऐसा सत्पुरुषों ने कहा है। तो ज्ञानी ने ऐसा कहा कि ज्ञानी की भक्ति करो, ऐसा कहना चाहिए क्या ज्ञानी को? वो ज्ञानी ज्ञान अपनी भक्ति करना कराने के लिए नहीं कहते हैं, तो मोक्ष के आत्मकल्याण के लिए वो बात कहते हैं। उनको तो वो चाहते लेकिन अगर नहीं कहेंगे तो ये भी एक उपदेश का अंग है। ये उपदेश कैसे मिलेगा? क्या नहीं मिलेगा? इसमें कही हुई बात सर्वशास्त्र को मान्य है, ये बात सर्वशास्त्र को मान्य है। ये शास्त्र विरुद्ध नहीं है किंतु सर्वशास्त्र में वो बात मान्य रहती है, ऐसा हुए बिना काम होने वाला नहीं है। भगवान सुखदेव स्वामी ने अक्षण अपने अक्षण पुत्र को 84 मोक्ष होने के लिए यही उपदेश दिया था। क्या ऋषभदेव भगवान ने चतुर्थ काल के प्रारंभ में यही उपदेश दिया था और उसके अक्षण पुत्र मोक्ष में चले गए, यही उपदेश चले गए। लंबी चौड़ी बात करने नहीं पड़ी थी, इस प्रकार के उपदेश से अक्षण पुत्र का मोक्ष हो गया। यह कहने का आशय क्या है कि ये बात हम अब कर रहे हैं पंचम काल में वो बात नहीं है, चतुर्थ काल के प्रारंभ से वही बात है। और आदिनाथ भगवान ने यही काम किया था, एक थोड़ा थोड़े सागर के पहले हुए हैं फिर भी इसका ज्ञान होता है, सर्वस्व अवस्था में भी इसका ज्ञान हुआ है। प्रसुद्ध भगवान ने ऐसा ही उपदेश दिया। परीक्षित राजा ने सुखदेव जी को भी यही उपदेश दिया है, वो भी अपना पुराण में नहीं है, सुखदेव जो परीक्षित राजा ने जो संवाद है वो अन्य उसको पुराण में आता है। परीक्षित राजा को उपदेश दिया था सुखदेव जी ने, सुखदेव जी यानी थे उसके गुरु थे और परीक्षित राजा उसका शिष्य था। अनंतकाल तक जीव निज छंद से चलकर परिश्रम करे तो भी वह स्वयं अपने से ज्ञान को नहीं पाता है, परंतु ज्ञानी की आज्ञा का आराधन अंतर्मुख में भी केवल ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। दिन वचनावृत है क्या? तो वस्तु स्थिति है कि अनंत काल तक जीव निज छंदे स्वच्छंदे, निज छंद मैंने स्वच्छंद से इतना भी परिश्रम करे तो अपने आत्मज्ञान की प्राप्ति आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकता है। पर यह बात अपने अनुभव से देखी है, तो वासुदेव को अपने पूर्व भव का जाति स्मरण ज्ञान था, जाति स्मरण मैंने पूर्व भव की स्मृति वाला ज्ञान था, पर अनेक पूर्व भव की स्मृति आई थी उसमें उन्होंने वो स्मरण में आया कि हमने आत्मज्ञान और धर्म प्राप्ति के करने के लिए बहुत परिश्रम किया, यम नियम संयम आप त्याग विराग अथा लिए संसार के नए दारे लिए ये सब कर चुके थे लेकिन अपने आप से ज्ञान नहीं हुआ। तो साधन बार अनंत कियो तदपि कछु हाथ अर्जुन कढ़ो, तो क्या है कि बिन सदगुरु कोई न भेद लहै, भेद मैंने सीक्रेट। ये आत्मज्ञान प्राप्त करने की कोई सीक्रेट बात है वो अनुभवी पुरुष बिना कोई बता सकते हैं। बिन सदगुरु कोई न भेद लहै, इसका भेद मैंने मर्म, मैंने इसके रहस्य, भेद मैंने रहस्य सदगुरु के बिना प्राप्त कोई नहीं। कितने काल तक परिश्रम करें, 5, 25, 50 भाव तक नहीं, अनंत काल तक अगर जीव सक्षम से चल करके परिश्रम करे तो भी वो स्वयं अपने आप से ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है। और शास्त्र में निवेशना बुद्धि का सिद्धांत है, ज्ञान की प्राप्ति ज्ञानी से ही होती है, बिना ज्ञानी के अन्वेषणा बुद्धि नहीं होती। ज्ञान प्राप्ति तो कुछ आगे की बहुत ही चीज है, इसके पहले का एक स्टेज आता है देशना बुद्धि का, देशना को धारण करना, लब्ध करना मैंने धारण करना, शुद्ध ज्ञान में उसको धारणा में लेना, उतना काम भी प्रत्यक्ष ज्ञान के बिना नहीं होता। तो आत्मज्ञान का तो सवाल रहता है, और ज्ञानी की आज्ञा का आराधक होता है। तो हमारे इतिहास में ऐसे बहुत जीव हुए जो अंतर्मुख में ज्ञानी की आज्ञा का आराधन करके केवल ज्ञान को प्राप्त हो गया, अंतर्मुख में केवल ज्ञान। दूसरी दूसरी तैयारी हो चुकी थी, एक बार बाकी थी ज्ञानी की आज्ञा का आराधन कर, तो कर लिया केवल ज्ञान में आ गया। महत्वपूर्ण बात करते हैं कि शास्त्र द्वारा कही आज्ञा, कही हुई आज्ञा है, वे आज्ञाएं परोक्ष है। शास्त्र में जो भी शास्त्र आज्ञा है, शास्त्र का उपदेश है, वो सब परोक्ष है, प्रत्यक्ष नहीं है। परोक्ष जी को अधिकारी होने के लिए कही है, पात्रता के लिए ये बात काम में आ सकती है, दर्शन मन करने से ये बात काम में आ सकती है। मोक्ष होने के लिए ज्ञानी की प्रत्यक्ष आज्ञा का आराधन चाहिए, मोक्ष होने के लिए तो प्रत्यक्ष ज्ञानी नहीं चाहिए, उसमें शास्त्र का काम का नहीं है, शास्त्र से मुक्ति नहीं होती है किसी। भले ही शास्त्र ज्ञानी पुरुषों ने लिखा है लेकिन ये बात परोक्ष रहती है, मोक्ष जाने के लिए तो प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्ति के लिए तो प्रत्यक्ष ज्ञानी ही चाहिए, उसमें शास्त्र से किसी को ज्ञान होगा नहीं। यह ज्ञान मार्ग की श्रेणी कही, ज्ञान मार्ग में श्रेणी में उत्तरोत्तर अपने आत्म उन्नति करने की परिणाम की परंपरा, उसको श्रेणी कहने में आता है। ज्ञान मार्ग में जो चलने वाले हैं और अपने आत्म उन्नति के परिणाम करने वाले हैं उनको ये बात नहीं है, एक उसको प्राप्त किए बिना दूसरे मार्ग से मोक्ष नहीं है, मोक्ष दूसरे मार्ग से मिलने वाला नहीं है। यह बुद्ध तत्व का जो आराधन करता है, ये जो प्रत्यक्ष ज्ञानी वाली बात है वो गुप्त तत्व रूप है, जो नहीं समझते इस बात को तो कृपा लगते हैं। अनंत काल में यहाँ ही बुला है, सत्पुरुष के प्रकरण में बुला है, क्योंकि वो तो उत्तम पुरुष स्थान वाला है, उसमें गुरु होती है, मुनि में कोई बाधा नहीं है, तीर्थंकर में सर्वज्ञ में कोई तर्क का जगह नहीं है, लेकिन समय तो तीनों में एक सा होता है, तुम दो के मानते हो, एक का नहीं मानता है, तुम तीनों का नहीं मानता है, ऐसे बात हो गई।
ज्ञानी की प्रत्यक्ष साधना, ज्ञानी की प्रत्यक्ष साधना लिखी है और आगे भी गए तो प्रत्यक्ष ज्ञानी की आधना है, तो दोनों क्या
ज्ञानी की यानी प्रत्यक्ष साधना करने वाले प्रत्यक्ष होने चाहिए, बस एक ही बात है। भक्ति से लिखा है आशय तो एक ही है, ज्ञानी प्रत्यक्ष और ये गुप्त तत्व है, इसका जो आराधना करता है वो प्रत्यक्ष अमृत को पीता है। क्या पीता है? उस प्रत्यक्ष अमृत को पिएगा और ये सर्वकाल के लिए निर्भय हो जाएगा या अजर अमर पद को प्राप्त करेगा, क्योंकि जो अमृत पीता है वो मरेगा नहीं। जो अमृत पीता है व्रत नहीं मरना अवश्य का नाम अमृत है, तो वही सच्चा अमृत है। अमृत कोई ड्रिंक नहीं है, पीने की चीज नहीं है, पीता है तो पीने की चीज नहीं है। वास्तव में ये ज्ञानी का उपदेश को आत्मसात किया, उसने अमृत को पिया और अजर अमृत को प्राप्त करेगा। इति श्रीमन् ऐसा करके उस पत्र को जान समाप्त किया।
सुख रत्ना